वंदेहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्नित्वं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानित्वंश नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महति कृपा से और सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से अभी हम लोग भक्ति पथ पर हैं, भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, सार्थक यही है। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, भाग्य पिछले जन्म किए हुए कर्म की वजह से सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है, घर मिलता है, पत्नी मिलता है, नौकरी मिलता है, भगवान की भक्ति नहीं मिलता है, भक्ति को करना पड़ता है। दूसरे चीज चाहे आप अगर कोशिश नहीं कर रही हो ना, पिछले जन्म में आप कमाए हैं ना, वो आ जाएगा प्रयास। मानव जन्म में कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं, विषय के लिए कोई प्रयास का जरूरत नहीं। शरीर है, थोड़ा कर्म करना ही पड़ेगा, आप तो इसे बैठकर नहीं ले सकते। कुछ भी कर्म करो, जितना सुख दुख है वो अलॉटमेंट होकर आपके लिए वो है, सब फिक्स है, लेकिन भक्ति को करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जब बहुत वृद्ध हो जाऊंगा, मेरा उम्र हो जाएगा, बाल बच्चे का जिम्मेदारी चला जाएगा, मेरा मन कृष्ण से ऐसे ही लग जाएगा, नहीं। विषय से छुटकारे मिल जाता है, लेकिन कृष्ण का चरण कमल में मन रहना ये तो प्रैक्टिस का चीज होता है, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जंजाल से मुक्त हो जाएंगे, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री हो गए, हम अच्छा से भजन कर सकते हैं, नहीं, अभी से करना है। कौमार आचरते प्राज्ञम, बचपन से थे छोटे बच्चे लोग है ना, वो लोग कर रहे हैं, ये उम्र है। संसार से जैसे शादी करते हैं ना, शादी करते हैं, शादी करने का बाद जो जो सब स्टेजेस है ना, इसको क्या बोले, अगर परमार्थ भाषा से बोले ना, हम गंदे की ला रहे हैं, काम क्रोध एनभी, ये सब गंदे की लाकर पर अंतर को हम दूषित कर रहे हैं। जो बच्चे लोग हैं उनका अंतर में कुछ नहीं, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर खाना पीना मिल जाता है, बस गया। एक काम की वजह से ऐसा हो रहा है, शरीर थोड़ा बढ़ जाता है, काम आ जाता है, फिर शुरू हो गया। इसलिए जीवन से पहले एक इंप्रेशन हमको क्रिएट करना है, भक्ति का भावना, इंप्रेशन समझ रहे हैं ना, इंप्रेशन, जैसे काम का इंप्रेशन हम जब युवक बन जाते हैं, काम का भावना रहता है मन में, इसको आप पैदा नहीं कर रहे हैं, ये शरीर का धर्म है। अब चाहे सो जाइए, अब ऑफिस में जाइए, कुछ भी काम कीजिए, ये इंप्रेशन है, लॉस्ट का इंप्रेशन है, क्योंकि उम्र की वजह से ये शरीर का धर्म हो गया। इसे आत्म का जो धर्म है भक्ति करना, ये इंप्रेशन अभी तो नहीं, हम भूल गए, उसको लाना है। हम भक्ति योग का एक दूसरा नाम है अभ्यास योग। भगवान भगवत गीता में यही बोले, अभ्यास करना, प्रैक्टिस। जैसे देखिए मंगला आरती हम आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग मंगला आरती आते हैं, अभ्यास करना है। रूपा जी कहा करते थे, तो मैं ये प्रश्न पर जाऊंगा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर, टाइम बहुत कम है हम लोग का पास, तो एक प्रसंग सुनेंगे, वृतासुर। ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है, कितना जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक जाएंगे। कौन, हाँ प्रभुपद बोलते थे, हैबिट बिकेम योर सेकंड नेचर, समझ रहे हैं ना, हैबिट जो करते हैं, अभ्यास जो करते हैं ना, वो सेकंड नेचर हो जाता है हमारा, एक फर्स्ट नेचर। वो क्या है, बॉडी को लेकर के नेचर, जन्म स्वभाव है, पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं, इसकी वजह से पिता माता देश सब मिला है ना, पिछले जन्म में किए हुए कर्म की वजह से, इसी हिसाब से हमारा एक नेचर। कोई शांत स्वभाव के होते हैं, कोई उग्र स्वभाव के होते हैं, कोई कड़वा स्वभाव के होते हैं, कोई तमगुण स्वभाव के होते हैं, जीने का स्वभाव भी अलग अलग है, खाना पीने का स्वभाव भी अलग अलग, सब अलग अलग। लेकिन हमको एक सेकंड नेचर पैदा करने पड़े, कृष्ण कस में जीने के लिए एक सेकंड नेचर में हमको जीना, फर्स्ट नेचर में नहीं। हम जैसे थे, जैसे भोजन कर रहे थे, हमारा लाइफस्टाइल जैसा था, उसको सब चेंज करना है। ऐसा नहीं कि मेरा नेचर जैसा है मैं ऐसे ही भक्ति करूंगा, नहीं, भक्ति भगवान को प्राप्ति के लिए जो पथ है वही पथ पर हमको जाना पड़ेगा। कोई कठिन काम नहीं है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ये सेकंड नेचर हो जाता है। देख लीजिए, जैसे मांस मछलियां पहला हम लोग भोजन करते थे, अभी छोड़ दिए है ना, अभी वो हमको गंदगी लग रहा है, सेकंड नेचर वेजिटेरियन हम हो गए है ना, अभी फर्स्ट नेचर हमको क्या लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, वो पहले कितना सेंटेड लग रहा था। देखो नेचर कैसा लग रहा था, कि नहीं प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, तो भोजन करते नहीं, क्या बनाए हो, घर में से बोलते हैं माता जी लोग, तुम क्या बनाए हो, अभी कोई कुकिंग कर रहा है उसका थोड़ा अरोमा आता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता है, कितना गंदा है, कितना गंदा है। तो इसका मतलब क्या है, इंद्रियों का जो स्वभाव है वो एक दूसरा एक नेचर को पकड़ सकता है, ये प्रूफ हो गया ना, दूसरा एक नेचर को, दूसरा एक स्वभाव को पकड़ सकता है, इंद्रियों का ये शक्ति है। तो भजन जो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान को विस्मरण हो गए, ये जो नेचर है भक्ति योग में, क्या क्या करने से वो सेकंड नेचर पैदा होता है, जैसे मणि प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं ना, सुबह आना, चैंटिंग करना, प्रसाद लेना, भागवत पढ़ना, सेकंड नेचर में जीने के लिए भक्ति जीवन में हम कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट नेचर नहीं। फर्स्ट नेचर तो हमको खींच कर लेता है, हमारा जो आदत है वो आदत, वो फर्स्ट नेचर है ना, वो तो जैसे किसका घर में वो ओनर है, फर्स्ट नेचर हमारा एक घर का ओनर है, अभी समझ रहे हैं ना, अभी क्या करना है, वो पारो पाटोनी उससे लेना है, जैसे आपका लैंड है, पारो पाटोनी है क्या है ना, पारो पाटोनी दे देते हैं दूसरे लोग को, अभी वो क्या हो गया, वो पारोफुल हो गया, ये सेकंड नेचर अभी वो पारो पाटोनी ले जाएगा, वो बोलेगा तुम बैठो चुपचाप। ये भक्ति जो अभ्यास हम कर रहे हैं ना, उसको हम पारो पाटोनी जैसा, ये सब तो नहीं, वो तो मालिक है, आत्मा का मालिक तो है ना, आत्मा तो मालिक शरीर का है, अभी शरीर का जो धर्म है, अभी ये आदत ये स्वभाव हमको कंट्रोल कर रहा है, अभी आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो आदत है, उसको हम लाना सेकंड नेचर। इसलिए भागवत पढ़ना है, भक्ति में पांच अंग, कितना अंग है भक्ति में, टोटल कितना अंग है, 64 लिम्स, इसमें इंपोर्टेंट है पांच, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह अर्चन, और धामबस नहीं, धामबस ऐसा नहीं बोल सकते। गुड़ी फिलोसफी आपको पता होगा, धाम का मतलब, धामबास का मतलब आप सब छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन में इसकर में जितना डिवोटी है वृंदावन में इतना लैंड नहीं है, नहीं धामबास का मतलब उधर लिखा है ना श्रीमद् तीर्थ सेवन और क्या टर्म है इसमें महात्म लिखे मथुरावास, मथुरावास तो मथुरावास में लिखा है इसका मतलब सब मथुरा में चलो। मथुरा मसला जहां विग्रह अर्चन होता है, जहां मंदिर है, जहां भगवान की शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्त को आश्रय लेकर जहां हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, शुद्ध भक्त का उपासना हो रहा है, इसमें लादिन शक्ति, समझ रहे हैं ना आप, इसमें स्पिरिचुअल पोटेंशियल रहते हैं। एक प्रिंसिपल को फॉलो करने से, जैसे कोई कमरा है वो कमरा होता है, जब गवर्नमेंट प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं वो ऑफिस हो जाता है, समझ लेना थोड़ा। जैसे कोई देखिए आपका फ्लैट है वो फ्लैट है और इसको पुलिस स्टेशन को दे दीजिए, अभी क्या हो गया, अभी वो एक इंपोर्टेंट प्लेस हो गया, वो कमरा नहीं है। कोर्ट वाले को दे दिए, अभी क्या हो गया, कोर्ट हो गया ना, वो प्लेस चेंज हो जाता है, आप नहीं बन सकते कमरा या पुलिस स्टेशन, ऐसे ही है। जहां शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर आप भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वही मथुरावास। हमारा आश्रय मंदिर है, हमारा आश्रय फ्लैट नहीं है, जैसे आप लोग बनाए हैं ना, आपका आश्रय यही है। जैसे चिड़ियों को देखो ना, चिड़िया चिड़िया लोग क्या करते हैं, घोंसले में कितना रात में रहते हैं, घोंसले में दिन भर क्या करते हैं, इधर उधर, उनका आश्रय बाहर फील्ड है, ग्रीन फील्ड उनका आश्रय, घोंसले में रात में रहते हैं। भक्त लोग का जीवन ऐसा है, हम सिर्फ रात बिताने के लिए घर को जाते हैं और दिन भर सेवा, मंदिर का सेवा, ऑफिस का ड्यूटी खत्म चलो मंदिर चलो, ये हमारा आश्रय, शुद्ध भक्तों का चरण कमल को आश्रय लेकर हम जी रहे हैं, ये मथुरावास। कितना हो गया, पांच हो गया कि नहीं, अरे पांच में एक इंपॉर्टेंट, कलयुग में पांच करना भी मुश्किल है, 64 से कितना इंपॉर्टेंट है, पांच, पांच से एक, एक को पकड़ना है हमको, एक से सब कुछ मिल जाता है। एक क्या है, साधु संघ, डिवोटी लोग का संघ कीजिए, भक्त लोग का संघ में आ जाएंगे ना, जब मंदिर में आ जाते भक्त लोग का संघ करते, भागवत सुनना पड़ेगा कि नहीं, नाम कीर्तन होगा कि नहीं, ठाकुर जी है कि नहीं, सब है ना, और क्या, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, भगवान की सेवा हो गया ना, अब मथुरावास हो गया, नाम कीर्तन भी हो गया, सब हो गया कि नहीं, सिर्फ साधु संघ से। इसलिए कहा जाता है कि साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र का है, इसीलिए साधु संघ बोल। लेकिन साधु संघ करने से, जब हम साधु संघ करते हैं, थोड़ा विधि है, थोड़ा निषेध भी है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में थोड़ा गलती हो जाता है साधु संघ जब हम करते हैं ना, नुकसान थोड़ा हो जाता है, यह है वैष्णव ऑफेंस, वैष्णव अपराध, गुरुबा अपराध, गुरुदेव की चरण कमल में हमारा मति नहीं रहता है, जो हमको कल्याण, जो हमारे कल्याण के लिए हर समय सोच रहे हैं और कल्याण की पथ पर हमको खींच कर ले रहे हैं, इसमें तुम्हारा भलाई होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उनका पिताजी माताजी जो भी प्लान बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, उनका भलाई के लिए बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं। साधु गुरु ऐसे, वैष्णव लोग ऐसे, लेकिन अपराध हो जाता, ये हमारा टेंडेंसी है। बाहर दुनिया में हम जब थे ना, हमारा स्वभाव क्या है, ज्यादा स्वभाव यही है कि एनवियसनेस, दूसरे कोई अच्छा, उनका वो अच्छा गाड़ी ले लिया ना, हम देखते हैं तो हमारा एक छोटा गाड़ी है, मान लीजिए मारुति सुजुकी आपका पास है, और किसका पास, क्या टाटा, टाटा का सफारी है, आप वो गाड़ी में बैठे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं उनका गाड़ी कितना कितना अच्छा गाड़ी है, मेरा तो गया भाई, तुम वही गाड़ी है, वही गाड़ी में बैठे हो एंजॉय। बाहर दुनिया का हालत है, मॉडल ऐसा ही, हमारा फ्लैट पुराना हो गया है, कितना दिन रहेंगे कोई ठिकाना नहीं, नया फ्लैट ढूंढना है, उस दिशा में दूसरे लोग को देखते हैं ना, तो गधा जैसा काम करना पड़ता है, रेलवियसनेस भी आ जाता है। ये नेचर बचपन से हम लोग, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई करते हैं, वो लोग तो अभी कुछ नहीं है, वो जब आ जाएंगे कॉलेज करियर में आ जाते हैं ना, तब तो देखो हॉस्टल में आ जाते हैं, उनके कितना परसेंट रहा, वो बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन आ गए, क्या हो गया ना, मेरा डिप्रेशन हो गया, क्यों, मेरा दोस्त का इतना परसेंटेज हो गया, मेरा नहीं। अरे क्या डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्यों आ जाता है, देखो उनको देखते हैं ना, इतना इन्वेस्टनेस आ जाता है तो पूरा मन काम नहीं करता है, बुद्धि काम नहीं करता, बाहर दुनिया का माहौल ऐसा है, इधर का माहौल दूसरा है, इधर का माहौल में कैसा जीना है पहले मैं आपको दिखाता हूं, भागवत कैसे बोलते हैं, इसका बाद हम जाएंगे वृताश्रम। गुणाधिकान मुदम लिप्सित अनुक्रोश गुणाधमात् मैत्री समानत अन्वेक्षित न तापि अभिभूयते। चौथा स्कंद है, ध्रुव महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सित, Everyone should act like this. ये प्रभुपद का ट्रांसलेशन देख लीजिए। भक्ति जीवन में हमको ऐसे जीना है, ये एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है, अगर आप कंटिन्यू करना है स्पिरिचुअल लाइफ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोग्रेस तो नहीं होगा, दुख नहीं मिलेगा। हम भक्ति जीवन में क्यों आए हैं, सुख के लिए आए हैं ना, सब छोड़ दिए हैं, परिवार जब भक्त बन जाते कोई ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, सब सोचते हैं ये एक दूसरा वेराइट का एनिमल हो गया, ह्यूमन नहीं बोलते, ये पशु है, वो कैसे मानते हैं ना बाहर दुनिया, ये क्या तिलक लगाए हैं, कहाँ नहीं खाते हैं, कोई फेस्टिवल में नहीं जाते, ये दूसरा पशु है, हमको जानवर जैसे वो लोग देखते हैं, उनको तो छोड़कर आए, ना तो हम क्लब जा सकते हैं, ना तो फिल्म हॉल जा सकते हैं, दूसरा कोई एंजॉयमेंट नहीं, हमारा एक एंजॉयमेंट है इधर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, इसमें चैंटिंग हियरिंग और डिवोटी एसोसिएशन। आगे तो नहीं बढ़ सकते, ठीक है, इस जन्म में आगे नहीं बढ़े तो दूसरा जन्म में बढ़ेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी करना है ना, इसको छोड़ देंगे तो फिर गया, इस जन्म में गया फिर दूसरा जन्म में गया, छोड़े सुख प्राप्त करने के लिए, इधर तो पहले हैप्पीनेस कैसे मिलता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सित, when he meet a person more qualified than himself, he should be very pleased. पहला गुणाधिकान मुदम लिप्सित, कोई हमसे कोई बड़ा है, धन से बड़ा का मतलब धन से, ज्ञान से या गुण से, अच्छा स्वभाव है उनका, अच्छा पैसा है, ठाकुर जी धन है, गुण है और क्या है, विद्या, नॉलेज, मुदम लिप्सित, वो ठाकुर जी उनको दिए हैं, आनंदित होना चाहिए, एनवियसनेस नहीं होना चाहिए, उनका इतना हो गया, उनको लोग सम्मान देते मुझे नहीं देते, भक्ति जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, पिछले जन्म की स्वीकृति के हिसाब से उनको मिलता है सब चीज, और इसमें हमारा लाभ है, ऐसे भक्त हमारे पास रहते हैं ना, जो भक्त का पास धन होता है दूसरे को धन देंगे, भक्त का पास ज्ञान है तो क्या करेंगे, दूसरे को ज्ञान देंगे, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन हमारा सहन नहीं होता। गुणाधिकान मुदम लिप्सित, कोई हमसे क्वालिफाइड है उसको देखकर आनंदित होना चाहिए। गुणाधिकान मुदम अनुक्रोश गुणाधमा, जो हमसे कम है, धन से कम है, ज्ञान से कम है, गुण से कम है, उनको क्या करना है, कृपा कर, ऐसा नहीं हर समय छोटे नजर से देखना है, उनको कुछ पता नहीं है, वो मंदिर माते कुछ नहीं कर, ऐसे बोलने से वो क्या करेगा बेचारा, वो सब कुछ छोड़कर आए हैं ना, भगवान खुश नहीं, भगवान की सृष्टि में देखिए, इधर बिच्छू है कि नहीं, बिच्छू समझते ना, स्कॉर्पियन, सांप भी है, बिच्छू भी है, लायन भी है, ह्यूमन भी है और साधु लोग भी है, चोर भी है, पतित भी है, इस भगवान की इच्छा यही है ना, सृष्टि में सब कुछ, सब लोग रहना चाहिए, अब सब लोग अपना अपना स्थिति पर, मेरे लिए कुछ करना चाहिए। सांप आप पता है ना, जो सांप रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं ना, वो ज्यादा शिव मंदिर का पास रहते हैं, तो कुछ नहीं तो चरणामृत पी लेते हैं ना, वो लोग तो दूध पी ले माने, कोई सांप को दूध पिलाता है क्या, आपका कॉलोनी में कोई सांप को दूध पिलाता है, अगर शिव मंदिर है ना तो सांप आ जाता है दूध पी लेता है, वो चरणामृत पी लिया तो नेक्स्ट लाइफ में वो क्या बनेगा, ह्यूमन बनेगा ना, शिव जी के चरणामृत ले रहे हैं, भगवान का यही इच्छा है, जगत में सब लोग रहेंगे जब तक पूजा करने वाले भी रहेंगे, समझ रहे हैं ना, भगवान को पूजा करने वाले भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, प्रभु का यही इच्छा है। हम किसको द्वेष नहीं करना है, हमारा पथ पर हमको चलना है, हमारा जो ड्यूटी है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, चैंटिंग करना है, इसे अपराध नहीं करना है, दूसरे भक्त से प्रेम से प्रेम संबंध रखना है। अगर प्रेम संबंध नहीं रख सकते हो, नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, कभी कभी भक्त का स्वभाव अलग अलग होता है, पसंद नहीं आता, ठीक है, बुरी नजरें उनको नहीं देखना चाहिए, आज वो ऐसे हैं भविष्य में ऐसे नहीं रहेंगे, सबका जीवन में कुछ चेंजेस आता है, आज जिसको हम बुरा नजर में देखते हैं ना, वो कल संसार में अच्छे नजर में आ जाएंगे। अब मत सोचिए कि ऐसा ठाकुर जी सबको ऐसे रखते हैं, नहीं, कभी बदल, स्पेशली क्यों ठाकुर जी चेंज कर देंगे, क्योंकि वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, कभी भी रो लेंगे, कभी भी ठाकुर जी का चरण कमल को अच्छा से पकड़ देंगे, ठाकुर जी उनको उनका लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम किसे बुरी नजर में देखना अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं हो रहा है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, पे ऑब्सेंसेस, हमारे गुरु जी कहा करते थे पे ऑब्सेंसेस कीप डिस्टेंस, प्रणाम करो दूर से रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण, ठीक, गुणाधिकान मुदम लिप्सत अनुक्रोश गुणाधमा, जो अच्छे बड़े गुण हमसे ज्यादा है, हमसे वो गुण से ज्यादा है, धन से ज्यादा है, उनको देखकर खुश होना चाहिए, और जिसका कम है उनको देखकर अनुक्रोश, अनुक्रोश का मतलब कृपा करना चाहिए, कृपा करना, वो गरीब भक्त है, कोई भी जीव है वो गरीब है, धन से कम है, ज्ञान से कम है, विद्या से कम है, गुण से कम है, उनको कृपा करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, हमारे पास कोई बड़ा धन नहीं है, संसार में लोग बोलते हैं अमृत है अमृत है अमृत, अमृत कहाँ है, स्वर्ग जाएंगे तो अमृत पिएंगे, इधर थोड़ा अमृत पीना चाहिए ना, एक नीतिकार यही बोल रहे हैं कि संसार विष वृक्ष द्वयैव अमृत उपमा, इस संसार में जो फल है सब विष का फल है, जो फल आप देखिए परिणाम विष हो जाता है, नहीं हो जाता, हो जाता आप लोग डिवोटी बन गए तो अभी थोड़ा फैमिली लाइफ में थोड़ा सुख है, नहीं तो शादी से करने पहले वो सोचते इधर नेक्टर है और शादी कर लेते बोलते विष है, मेरा जीवन पूरा विष ही हो गया, बोलते नहीं है, हो जाता है, इस संसार का ऐसा नेचर है, दुखालय है ना, हम सेंटिमेंटल नहीं बोल रहे हैं, दुखालय ठाकुर जी बनाए हैं, हम सुखालय कैसे बनाएंगे, ठाकुर जी बनाए दुखालय कर, ये तो पूरा उनका नेचर है, सुखालय कैसे हो जाएंगे, जहां ऐसी सिस्टम नहीं है, चांस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चांस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो गर्मी होगा सहन करना पड़ेगा ना, जहां ऐसी है उधर फैसिलिटी, ये दुखालय है ना, इधर कुछ नहीं, जो भी करो दुख, सिर्फ एक में सुख मिलता है वो ये हरि भजन, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। इसलिए हम प्रभुपाद से बहुत गुरु पूजा करते हैं, आभारी हैं, जीवन में सुख का पथ क्या है हमको दिखाएं, नहीं तो हम कितना, आप लोग सुख पढ़ाई किए हैं, आईटी सेक्टर रहे हैं, कितना बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन वही दुखहाल है, सुख का संधान हमको नहीं मिल रहा था, अंधकार में कोई आदमी है उनको कोई टर्च दिखाता है वो कितना आभारी हो जाता है, ऐसा प्रभुपाद टर्च नहीं दिखाए हमको, सूर्य दिखा दिए, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, हम अंधकार में थे और प्रभुपाद सूर्य को लाए, साधु लोग का यही कंट्रीब्यूशन है, ये आभारी हम रहते, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, तो हमसे जो बड़े हैं गुण से धन से ज्ञान से उनको क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्या कैसे खुश होना चाहिए, मन तो नहीं मानता है मुझसे बड़ा हो गया, नहीं भगवान ने उनको दिए, गुरु जी उनको दिए, ये गुरु का भगवान का कृपा पात्र है, मन को ऐसे समझाना, नहीं तो एनवियस नेचर आ जाएगा, फिर वैष्णव अपराध हो गया, सुख भी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, पांडव थे जंगल में, अरे दुर्योधन थे राजमहल में, सुख में पांडव थे दुर्योधन नहीं थे, क्योंकि एनवियस उनका था ना, पांडव लोग का एनवियस नेचर नहीं था दुर्योधन का ऊपर, दुर्योधन का था, इसे दुर्योधन मर रहा था, चाहे मल में हो, लेकिन वो जंगल में थे, वो सुख में थे, इस संसार सब लोग दुख प्राप्त हो रहे हैं एक ही चीज के लिए, एनवियसनेस के लिए, आश्चर्य के, नहीं हम लोग ऐसा नहीं, और जो हमसे कम है उनको दया करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, समानत मैत्री अन्वेषित, जो हम समान है, समान समझ पाए ना, इक्वल क्वालिफाइड, मैत्री अन्वेषित उनसे फ्रेंडशिप करना चाहिए। आजकल फ्रेंडशिप क्या है, प्राउड है, वो कोई बंधु से मिलने जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं बंधु से अच्छा कपड़ा पहन कर जाऊंगा, अच्छा मोबाइल पकड़ कर जाऊंगा, और जब भी बातचीत करते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा क्या, वो बोलते हैं मेरा इधर फ्लैट है, उधर फ्लैट है, मैं अमेरिका में हूं, मेरा पत्नी ऐसा, ये तुम्हारा बंधु है, तुम इतना क्यों ऐसे बोल रहे हो। पहले जमाने में जब बंधु को मिलते थे कैसे बोलते थे, बचपन का बात बोलते थे, तुम्हारा याद है ना, वो आम पेड़ में हम कैसे चढ़ते थे, आम खाते थे, खेती बाड़ी में जाते थे। आजकल ऐसा टकिंग कभी नहीं, आजकल ऐसा फ्रेंडशिप नहीं, वो सिर्फ प्राउड, तुम कैसे हो, कितना तुम्हारा बैंक बैलेंस है, म्यूचुअल फंड में कितने रखे हो, कहां कहां फ्लैट है, ये और क्या है। आजकल मैत्री नहीं है, मैत्री समानत्वान्वेषित, मैत्री समानत्वान्वेषित नतापि अभिभूयते, जो समान आपका लेवल इक्वल लेवल है उसको बंधु भाव से देखना चाहिए, कैसे हो, सुख में हो कि नहीं, कैसे हो। और नारद मुनि बोल रहे ध्रुव महाराज को, ध्रुव न तापि अभिभूयते, ताप तुमको कभी तपाएगा नहीं समझ रहे हैं ना, ताप का शक्ति नहीं होता है तपाने के लिए, दुख का शक्ति नहीं होता है हमको दुख देने के लिए, और इसको फॉलो नहीं करते ना, दुख को हम आमंत्रण करते, तुम आ जाओ मुझे तपा, मन का ये धर्म है, हम क्या करें, ये प्रिंसिपल है वैष्णविज्म, इसको पहले पकड़ना है। अगर हमको सुख में रहना, जितना दूर जाएंगे तो जाएंगे, तो गुरु और कृष्ण इनका ऊपर है, कितना बड़ा बड़ा भक्त हमको बनाएंगे और गोलोक वृंदावन लेंगे कि नहीं, फिर भी हम सुख में रहेंगे, जो सुख में रहता है तो थोड़ा अच्छा से भजन कर सकता है, ये प्रिंसिपल न तापे अभी भी। और इसका परपोट आप पढ़ लीजिए, मेरा टाइम नहीं है कि मैं एक प्रश्न पर जाने हूं, इतना सुंदर परपोट है, घर में जाकर पढ़ लीजिए, इसका अपोजिट लिखे क्या क्या होता है, जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में लिखे, जनरल वी फाइंड समवन मोर क्वालिफाइड देन आवरसेल्फ बिकम एनवियस ऑफ हिम, पूरा डिस्क्रिप्शन प्रभुपद अच्छे से किए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्रीज, जो जो कमेंट्री लिखे आचार्य लोग संस्कृत में, प्रभुपद तात्पर्य में लिख लीजिए उसको, कितना सुंदर से अंग्रेजी में लिखे, पढ़ लीजिए आप। यही मैं बोल रहा था, ये प्रसंग याद आ गया, केस क्यों आया, याद आ गया, देख लीजिए चित्रकेतु कितना बड़ा भक्त था, शंकर शरण की कृपा से ना, पहले तो अंगिरा मुनि का कृपा प्राप्त किए, इसका बाद नारद मुनि का कृपा प्राप्त किए, दोनों का कृपा प्राप्त करके शंकर शरण का साक्षात्कार किए, और इस वही शरीर में, शरीर चेंज नहीं किए, चित्र के परिवर्तन नहीं किए, शंकर शरण को दर्शन करने का बाद घूम रहा था, स्वर्ग जाने, आप हम ऐसे स्वर्ग जा सकते हैं क्या, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, ड्रेस को चेंज करके जाना पड़ता है, इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन चित्र के तो इतना बोनाफाइड हो गए थे, इतना पावरफुल हो गए थे, नारद की कृपा से, संघर्षण की कृपा से शरीर परिवर्तन नहीं किए, झुंड की झुंड वो क्या बोले, स्वर्ग में अप्सरा लोग का सब कीर्तन कर विमान, ये छोटा काम नहीं है, विषय का साथ रहकर भजन करना बहुत बड़ा काम, समझ रहे हैं ना, त्यागी लोग के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं, जैसे हमारे पास बाल बच्चा नहीं है, पत्नी नहीं है, जो जो ब्रह्मचारी संन्यास ग्रस्त होते हैं, ब्रह्मचारी संन्यासी होते हैं, उनके लिए चैलेंजेस इतना ज्यादा नहीं है, विषय पास में नहीं है ना, थोड़ा मन में आ जाते तो फिर फेंक देते हैं, मन को समझा देते हैं, तो हमारे पास नहीं है क्या कर, उनका नहीं है पैसा नहीं है, वो तो भोग नहीं सकते हैं, सटल माइंड में थोड़ा थर्ट आता है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका पास पैसा है, सुंदर पत्नी है, उसका साथ वो भजन कर रहा है, ये तो क्रेडिट है। शिवजी को क्यों हम इतना बड़ा वैष्णव मानते हैं, संसार में सबसे बड़ा सुंदरी नारी उनका पास है, पार्वती, और अपुलेंट उनका पास, सबको सब कुछ दे देते, फिर आराम से भजन करते हैं, इसलिए वैष्णवाना भी था सब। और थर्ड चीज है, दो चीज का बात, नेगेटिव में भजन कर रहे, प्रतिकूल में भजन कर रहे, जितना भूत प्रेत है उनका पास, समझ रहे ना, घोष्ट लोग, आदमी थोड़ा मन पागल हो जाता है वो घोष्ट बन जाता है, और साक्षात घोष्ट को पास में रखे फिर भजन करते, इसलिए तो बड़ा व्यसना। जो जितना प्रतिकूल में भजन करते हैं हम हड़बड़ा हो जाते हैं, हम थोड़ा हड़बड़ा हो जाते हैं, थोड़ा नेगेटिव आ जाता है, प्रतिकूल आ जाता है, हम सोचते हैं क्या होगा क्या होगा। नहीं, यही तो परीक्षा है। जो जितना प्रतिकूल में, प्रतिकूल समझ रहे हैं ना, नेगेटिव इफेक्ट में भजन करता है वो इतना बड़ा भक्त होता है। प्रहलाद द ग्रेट, पंडित द ग्रेट, प्रभुपद कहा करते थे, क्यों कहा करते थे? गोपीज द ग्रेट, प्रभुपद क्यों कहा करते थे? तीनों को जीवन में देख लीजिए, सब प्रतिकूल में भजन के। प्रतिकूल भजन में एक अच्छा स्वभाव होता है कि प्राउड नहीं आता, मन में कभी ये भाव उदित नहीं होता है कि मैं बड़ा भक्त हूं। इतना विपद आ रहा है तो हर समय ठाकुर जी का चरण कमल में मती रहता है, झुक कर रहना पड़ता है। तो हम तो नहीं सोचते, हमारा इतना ताकत नहीं है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है सोचता है नहीं नहीं भजन नहीं होगा, ऐसा करना है ऐसा करना है। ठाकुर जी अगर हमको अनुकूल दिशा में लेते हैं तो हम जाएंगे, हम खुद सोचना नहीं चाहिए कि कहां अनुकूल, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट नेचर नहीं है। हम भक्ति में जो छह अंग है ना, अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रखे थे विश्वास, गोपतृदय वर्णम तथा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छह में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसका गोपतृत्व वर्णम नहीं है उसका कोई राइट नहीं है अनुकूल क्या है। आज अनुकूल सोचता है, आज सोचता है इधर कौन सा हैदराबाद है, हैदराबाद में फेवरेबल नहीं है, मैं कहां जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, फिर वृंदावन जाएगा फिर बोलेगा ना नहीं इधर तो अच्छा नहीं, इधर बहुत मायावादी हो गए हैं, धीरे धीरे से डिस्कशन हो रहा है, मुझे छोड़ना है। कि ये अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, उनका मन का भाव ऐसा चलता रहे। जिसका गुप्तुत वर्णम है उनका राइट्स है। गुप्तुत वर्णम इसका मतलब कृष्ण मेरा रक्षक है, कृष्ण मेरा पालक है, मैं कहां भी रहूं वो मेरा जिम्मेदारी लेंगे, वो मेरा जिम्मेदारी लेंगे, मुझे रक्षा करेंगे, मुझे पोषण करेंगे, ये इंपोर्टेंट है। इसका बाद उनका राइट होता है, तब कृष्ण व्यवस्था कर देते हैं हमारे लिए अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है। लेकिन प्रतिकूल आएगा, प्रतिकूल जैसे ऊपर जाना है तो कैसे जाना है, जैसे ऊपर बालाजी का ऊपर जाना है कैसे जाना है, सीढ़ियों से जाना है ना, वो तो प्रतिकूल है, पांव के लिए प्रतिकूल है। ऊपर जाते हैं ना, जो ऊपर जाते हैं उनके लिए थोड़ा प्रतिकूल होता है, लेकिन जो स्टेप्स है वो हमको ऊपर लेता है, नीचे नहीं गिराता है। प्रतिकूल ऐसा है, प्रतिकूल जो आता है जीवन में ये ऊपर लेता है भक्त लोग के लिए, कर्मी लोग को नीचे गिरा देता है। समझ रहे हैं ना, कर्मी और भक्त में इतना अंतर है। कर्मी लोग तो सोचते हैं आ गया तो चलो शनि मंदिर चलो, इसमें एस्ट्रोलॉजर पास चलो, इधर चलो उधर चलो, वो तो कर्म नहीं करते हैं, वो ही प्रतिकूल का पीछे भागते हैं। हमारा प्रिंसिपल ऐसा नहीं है, वो स्टेप आ गया, जितना नेगेटिव चीज आ जाता है भजन, हम भजन करते हैं जब वो आ जाता है इसका मतलब एक स्टेप आ गया ऊपर चढ़ने के लिए। क्योंकि जितना प्रतिकूल आता है ना तब शरणागत उतना पकता है, हम सरेंडर सोल है कि नहीं तब तो पता चलेगा। प्रतिकूल जब हो जाता है तब सोलह माला होता है कि नहीं, भागवत पढ़ते हैं कि नहीं, तब तो पता चलेगा हमारा प्रेम है कि नहीं। शरीर जितना खराब हो जाता है क्या भोजन छोड़ देते हैं, तो मन खराब हो जाता है भजन क्यों छोड़ देते हैं? शरीर खराब हो जाते फिर भी डॉक्टर बोलते, पहले डॉक्टर को नहीं बोलते कि दवाई क्या खाना है, पहले बोलते भोजन बताओ ना। मेडिकल से रिलीज जब होते हैं तो पहले बोलते क्या क्या खाना है, पहले पूछते हैं सर क्या क्या लेना है, दवाई का बात। शरीर खराब है फिर भोजन चाहिए, लेकिन मन थोड़ा खराब होता है भोजन नहीं करते। नहीं, ठाकुर इसको दिखाने के लिए प्रसंग, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखे कमेंट्री, ये सब प्रभुपद के प्रपोर्ट में, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है। भक्त कहां भी गिरता है, कितना भी प्रतिकूल स्थिति पर छाड़ते हैं ना, प्रतिकूल स्थिति पर जाते हैं ना, भोजन भजन कभी नहीं छोड़ता। चित्रकेतु इतना बड़ा भक्त था लेकिन थोड़ा अपराध हो गया, ये तो अपराध नहीं, चक्रवर्ती का भाव ये था कि हमको दिखाने सिखाने के लिए, वो गुरु भाई थे ना शिवजी, शिवजी का इष्ट कौन है, शंकरसेन है। और चित्रकेतु का इष्ट कौन है, उनका इष्टदेव कौन है, शंकरसेन है। तो गुरु भाई हो गई कि नहीं? और गुरु भाई को कभी कभी थट्टा करते हैं, मजाक करते हैं, वो मजाक कर रहे थे, लेकिन सती ने उसको पकड़ लिया। जीवन में सती कभी असती नहीं थी, उनका नाम सती थे ना, कभी भूल नहीं किए थे, सिर्फ इधर ही भूल हो गया। शिव जी का मनोभाव क्या है पकड़ में नहीं आए, और ये ईश्वर का इच्छा था, कृष्ण का इच्छा था, ठाकुर जी हमको दिखा यही दिखा रहे थे। देखो संसार में सबसे बड़ा विषय जो है वो सबसे बड़ा भक्त बन सकता है, हम विषय को घृणा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो विषय, सबसे बड़ा विषय कौन था? चित्रकेतु। कितना शादी किए थे? एक करोड़। सतयुग की बात है, डिबूटी लोग कभी कभी पूछते क्या एक करोड़ शादी कैसे किए, हम जैसे है क्या? वो हमारा एक कमरा है बस, इसमें तुम एक को रखने के लिए ताकत नहीं है। वो लोग ऐसे नहीं, वो राजा थे, ऐसे नहीं कि एक राजा, क्षत्रिय लोग को ज्यादा शादी कर सकते हैं, और ये राजा भी थे, सत्ययुग का बात थे। तो राजा को शादी करने के लिए, उस समय राजा कितने ऑपुलेंट थे, उनको शादी करने के लिए कितना लड़की आएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? एक लड़का के लिए, एक पुत्र के लिए कितना शादी, एक करोड़ शादी किए थे, और बहुत अटैच्ड थे। और साधु का कृपा कैसे देख लीजिए, नारद मुनि और अंगिरा कृपा कर दिए, वही शरीर को परिवर्तन, वही विषय शरीर जो था अभी चिन्मय शरीर हो गया, सख्यात संकर्षण को दर्शन किए, सख्यात। और झुंड के झुंड है वो जो अवसर है, उन लोग का साथ कीर्तन कर रहे थे, सुंदरी अप्सरा लोग का साथ ही कीर्तन कर रहे थे। ये प्रसंग तो मैं नहीं बोलूंगा, ये दोनों जो अभिशाप दे रहे हैं, सती अभिशाप दे रहे हैं, तो दोनों से बातचीत चल रहा है, सब मन में चक्रवर्त कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी ने गोद में बैठाए थे किसको, सती को, पार्वती को गोद में बैठा कर प्रवचन दे रहे थे। किनको प्रवचन दे रहे थे? सब ब्रह्मचारी लोग को प्रवचन दे रहे थे। शिव जी जब प्रवचन देते हैं कोई गृहस्थ को अलाव नहीं करते, वो इतना हाई स्टैंडर्ड उनका, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं अलाव नहीं करते, इसका मतलब पूरा हर इतना हर टॉपिक से वो लेते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसलिए चतुर समझ जाते हैं। जिन लोग का विषय का संग नहीं है, उन लोग भागवत आस्वादन कर सकते हैं शिव जी से, चतुर समझ जाते थे, नारद मुनि जाते थे, नवजोगेंद्र जाते थे, सब ब्रह्मचारी बैठकर सुनते थे। और ब्रह्मचारी के सामने गोद में बैठाया था, ऐसे बांव बांव, इसको क्या बोलते, जंग बोलते हैं ना, गोद में बैठाते थे और आलिंगन करके ऐसे प्रवचन देते थे, और इसमें रोते थे, अष्टसाती भाव भी कराता था। ब्रह्मचारी लोग का मन में कोई असर नहीं था, उन लोग को पता है उनका पोजिशन क्या है। नारी को गोद में बैठाने से तो लस्ट आएगा, दर्शन करने से कामना आता है, और ये गोद में बैठा कर रो रहे हैं और भागवत प्रवचन दे रहे हैं, उनका कोई डाउट नहीं था, कोई ब्रह्मचारी का। लेकिन वो तो गुरु भाई है ना, उन्होंने सोचा कि भविष्य में अगर कोई साधारण जीव ऐसे दर्शन कर देगा शिव जी का, ये जो कंडीशन है वो तो विनाश हो जाएगा ना, अपराधी करेगा। तो इसीलिए वो बोले, वो जब ऐसे बोल रहे थे तो शिव जी भी बोल रहे थे, देखो मैं एक को गोद में बैठा हूं, तुम कितना गोद में बैठा हो देखो, क्योंकि वो हर समय नारी लोग का साथ रहते थे, चित्रकेतु अप्सुर लोग का साथ, और ब्यूटीफुल, मैं एक का पास हूं, तुम तो करोड़ का पास हो, क्योंकि झुंड के झुंड जो विमान है ना, विमान कई कई विमान उनको सराउंड करता था, जिस विमान में चित्रकेतु थे, और सब गुणगान कर रहे थे आपस में, ऐसे गुरु भाई है ना, जोकिंग कर रहे, थोड़ा मजाक कर रहे हैं। और ये ठाकुर जी का इच्छा था कि देखो विषय लोग भी साधु कृपा से सबसे बड़ा भक्त बन सकता है, और भक्त का अगर कुछ पतन हो जाता है उनका कभी कुछ विनाश नहीं होता है। सर्वमपि धर्मस्य त्रायते महत भयात्, ये तो अजाम मिल का प्रसंग था, रूपा जी अजाम मिल में लगाते हैं, आचार्य लोग अजाम मिल में बोलते हैं, हर भक्ति कभी विनाश नहीं होते हैं। जैसे कोई आप लोग मंदिर में आ रहे हैं, कुछ दिन भजन किए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो तो उनका क्या, उनको पता नहीं, उनको अच्छा आराम लग रहा है, मजाक लग रहा है, वैसे सुबह सुबह आ जाते हैं। लेकिन इतना महान है भक्ति को, फल जब जब फल मिलेगा ना, तो उनको ही पता नहीं चला इतना बड़ा फल मुझे क्यों मिल रहा है, भक्ति का बीज ऐसा होता है ना, वो कभी क्या बोलते हैं, नष्ट नहीं होता। कर्म का बीज जैसे नष्ट नहीं होता है, लेकिन भक्ति में कर्म का बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। सिर्फ एक चीज होता है, वो अपराध जब हो जाता है रुक जाता है वो बीज। और क्या होता है इसके अंकुर बोलते हैं ना, अंकुर, अंकुर उद्गम पेड़ नहीं होता। अपराध से यही होता है, वैष्णव अपराध, इतना गलती हो गया। ये तो गलती नहीं, ठाकुर जी का लीला था, सती ने बोल दिया, बाद में बहुत पश्चाताप किया, मैंने क्या कर दिया, और वो गिरा। उस समय पूरा जब अभिशाप दिया ना, वो गिर रहा था विमान से, चित्रकेतु गिर रहा था, और वृत्रासुर नारायण परा सर्व न कुतश्चित विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरके सुतुल्यार्थ समदर्शिना। शिवजी दिखाकर बोल रहे सती को, देखो सती यही है भगवान का भक्त, तुम रो रहे हो, तुम अभिशाप देकर रो रहे हो, और जिनको अभिशाप दिए हो ना वो हंस रहे हैं, और असुर जो नहीं जा रहे, ये भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त कितना महान होते हैं, कितना सहनशील होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये कृष्ण का अरेंजमेंट है। जीवन में हम मन को पासीफाई कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, एक पॉइंट पर हर समय याद रखना चाहिए, सुख दुख जो भी जो कुछ मिलता है ना, मेरा प्रभु की दिया हुआ दान है, मेरा गुरु आचार्य लोग मुझे दे रहा है, अगर वो लोग मुझे मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो प्रयास है बहुत बलवान नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्त करने के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो भी पर्याप्त नहीं, वो बलवान नहीं। तो भगवत प्राप्ति के लिए कैसे बलवान हो जाएंगे, ये पर्याप्त नहीं है। और गिर रहे थे, वो गिर रहे थे और हंसते थे, मां जी बोलते बोलते, अंबिके अंबिके बोलते बोलते गिर रहे थे, और मां जी बोले, अभिशाप देने वाली को कौन अभिशाप दिए, पार्वती ने, उनको मां जी बोले, तो पार्वती को इतना शर्म लगे, अरे ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, मैं जिनको अभिशाप असुर जोनी में जाने के लिए अभिशाप दे दिए, वो मुझे मां बोल रहे हैं। और पार्वती का भाव यही है कि हाँ ठीक है, मां जी कब गुस्सा हो जाते हैं ना, मां जी कब गुस्सा हो जाती है, फिर तो इसमें भलाई होती, तुम जा, तुम्हारा नष्ट कुछ भी नष्ट नहीं होगा। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कितना सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, और सबको ये मानते हैं कि मेरा प्रभु का ये व्यवस्था है। भक्त का मतलब यही है, बुद्धि मन स्तर पर ज्यादा वो काम नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, मन तो कुछ बोल देता है मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है, बुद्धि भी ऐसा बोलता है, और जब चैंटिंग करते हैं वही मन बुद्धि में हमारा जो भावना है ना उसमें प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा मुझे कर दीजिए, मेरा थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए, मेरा मुझे थोड़ा इधर भेज दीजिए, मैं वृंदावन जाऊंगा। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम डिपेंड करते जिसमें भला ये जगन्नाथ जी आप कर लीजिए, मुझे, मैं तो छोटा बच्चा जैसा हूं, किसमें मेरा भला ही है किस, मुझे पता नहीं। किसी भी स्थिति आ जाता है ना, भगवान का भक्त जो है वो शरणागत होता है, ये उनका की पॉइंट है। हमारे डिवोटी लाइफ में एक की पॉइंट है, अरे चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए हम पहले महाप्रभु को पकड़ते, चरण कमल को पकड़ते हैं, पहले जो आता है ना पहले गौर नित्यानंद को पकड़ते, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन, वो कृष्ण बलराम है, वो जगन्नाथ है, लेकिन वो एक सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको किए हैं कि भक्ति करना इतना मुश्किल है कलयुग में, लेकिन वो शॉर्टकट की पॉइंट दिए, तुम शरणागत हो जाओ, उसका बाद भक्ति करो। भक्ति करके शरणागत होना नहीं, हम लोग को हम शरणागत सीखना चाहिए, पहले ये नहीं होता, इसलिए जो शरणागत भक्त होते हैं, हमारे डिवोटीज होते हैं, उनसे सीखना चाहिए। सरेंडर का मतलब क्या है, कृष्ण में आपका, सनातन गोस्वामी यही बोल रहे हैं, अहम तदीयो, मैं आपका हूं, तो आप मेरा व्यवस्था कीजिए। इसलिए विश्वरूप वो जो गिर रहे थे, वो कैसे गिरे ये प्रसंग आएगा, ये तो सातवां अध्याय है, और सिक्स नहीं सेवेंथ, फोर्टी फोर वर्स देख लीजिए, सिक्स सिक्स फोर्टी फोर, रचना दी डटर ऑफ दैत्य बिकेम द वाइफ ऑफ प्रजापति त्वष्टा बाय हिज सीमन ही बेगट बिगट इन हर रूम टू वेरी पावरफुल सन नेम सन्निवेश एंड विश्वरूप। ये प्रसंग सुखदेव गोस्वामी कैसे बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बहुत सावधान से सुन रहे थे और जब देख रहे थे कोई अभिशाप प्रसंग आ जाता है ना, उनको बहुत उत्साह लग रहा था और बहुत पश्चाताप भी कर रहा था, क्योंकि वो एक अभिशप्त थे, उनको अभिशाप मिला था ना, इसलिए वो हर समय रिपेंट कर रहे थे कि मेरा कितना बड़ा गलती मैंने कर लिया, इससे कोई किया है क्या। और अभिशाप प्रसंग कब भी भागवत में आ जाता है ना, वो कभी नहीं छोड़ते, परीक्षित पकड़ लेते उसको। रचना जो है वो दैत्य का कन्या है और तोष्टा जो है वो देवता है, उनको शादी किया था, उनसे विश्व रूप आए। क्योंकि भागवत में आप क्वेश्चन को पहले पकड़ना है, क्वेश्चन अगर नहीं पकड़ते हैं ना तो आप भागवत समझ में नहीं आएंगे, ये प्रसंग कैसे आए। अरे नेक्स्ट वर्स, तंग ब्रवीरे सुरगण सुस्त्रियम दिशुताम अपी विमते न परित्यक्ता गुरुणांगिरे से नयत। ऑल्दो विश्वरूप वाज द सन ऑफ डॉटर ऑफ देयर इटर्नल एनिमीज ऑफ डीमंस, द डेमिगॉड्स एक्सेप्ट हिम एज देयर प्रीस्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा व्हेन दे वर अबेंडन बाय देयर स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति हुम दे हैड डिसरेस्पेक्टेड। ब्रह्मा जी ने उनको बोले कि तुम देवता लोग को बोलो गुरु चाहिए, जरूरत है गुरु चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए, समझ रहे हैं ना। जीवन में ये है, प्रेजेंट चैलेंजेस आएगा। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, गुरु क्यों जरूरत है, शास्त्र है, महात्मा लोक है, थे महात्मा लोक, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो चैलेंजेस आता है उसको क्या करेंगे, इसके लिए कोई प्रेजेंट हमको कंसल्ट करना है, कोई हायर पर्सनालिटीज। जैसे आपका पिताजी नहीं है, पिताजी है तो आपको कोई चैलेंज नहीं पड़ता, पूछ लेते हैं, वो एक्सपीरियंस है ना। पिताजी चले जाता है ना तो क्या करना है आपको, जो चैलेंजेस आता है ना, दादा बोलते हैं उड़िया में, हिंदी में भी दादा बोलते हैं ना, पिताजी का जो भाई है नाना चाचा नाना बोलना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ में सिर्फ चैलेंज आता है और जितना हम डिवोटीज है ना, हम लोग का चैलेंज अलग अलग है, नारी का चैलेंज अलग है, पुरुष का चैलेंज अलग है, और जितना डिवोटीज है उनका, चाहे मैरिड हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे संन्यास हो, सबका चैलेंज लाइफ में अलग अलग। और प्रैक्टिकली कौन सा सिचुएशन में हमको कैसे डीलिंग करना है, वो जो इंटेलिजेंट हम लोग के पास नहीं है, जो हायर पर्सनालिटीज होते हैं, जिन लोग हर समय दूसरे के मंगल के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और जो भगवान जीवन भगवान को अर्पित किए हैं, उनका जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के लिए कुछ करना। हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे लिए कुछ करना, ये अंतर है चेला और गुरु का, यही अंतर है। हम डिसाइबल क्यों होते हैं,
क्यों डिसाइबल, हम शिष्य इसीलिए हैं कि हर समय सोचते हैं मुझे कुछ करना, मेरा एक प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व करना है।
इसलिए प्रैक्टिकल जो चैलेंज है हम गुरु को पूछते हैं, परिप्रश्न जो तीनों चीज है ना, क्या क्या है, प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब क्या है, नहीं प्रणाम नहीं करना है, मैं आपको प्रणाम कर लूंगा आप पैसा मुझे दे देंगे, आपका एटीएम कार्ड का पासवर्ड दे देंगे, हैं? प्रणिपात का मतलब ठीक है आपका कमरा नंबर मुझे बोल दीजिए, मैं जाऊंगा मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं तो दंडवत प्रणाम करूंगा, बोलूंगा कि आपका एटीएम का सीक्रेट दे दीजिए, आप दे देंगे, नहीं नहीं ऐसे गुरु नहीं देते। प्रणिपात का मतलब शरणागत, सरेंडर, प्रणाम तो है शरणागत, तो मैं आपका शिष्यति हम साधिमम त्वम प्रपन्नम, प्रपन्नम वो प्रपन्नम इधर लगे, प्रपन्नम मतलब प्रपन्नम इधर प्रणिपातम है ना, प्रणिपात है इधर प्रपन्न है, मैं आपका शिष्य हो गया हूं। कैसे शिष्य तुम बने हो, क्या गुरु को उपदेश देंगे जैसे पहले चैप्टर में मुझे उपदेश दिए हो, नहीं नहीं प्रपन्नम, मैं आज से बिल्कुल मेरा गया कुछ, मैं आपका शरणागत हो गया, और इधर प्रपन्नम है, उधर क्या है परिप्रश्न है ना, प्रणिपात, ये दोनों एक शब्द है, एक अर्थवाचक है, शरणागत हो जाए ठीक है, शरणागत हो जाएंगे और क्या 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 करेंगे परिप्रश्न। इसलिए गुरु जरूरत है, पूर्वाचार्य जो है ना उनका वो सब कुछ हमको दिए, लेकिन एक चीज के लिए हमको प्रेजेंट सिचुएशन में ड्रिलिंग स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। सेवा तो कर सकते हैं भगवान का सेवा, समझ रहे हैं ना, और शरणागत हो सकते हैं, लेकिन परिप्रश्न जो है ना, अभी जो जैसे एक उदाहरण देता हूं, प्रभुपाद सब कुछ दिए हैं, आचार्य लोग सब कुछ दिए हैं, लेकिन हमारे लोग पास जो चैलेंज है अभी किसको पूछेंगे, मुझे कैसे मोबाइल छोड़ना है, ये तो शास्त्र में नहीं लिखा है। कौन सा नकरी क्यों, आपको भजन करना है ना, दो आपका भजन के लिए दो चीज चाहिए, एक व्यावहारिक जीवन चाहिए, एक परमार्थ जीवन चाहिए। शरीर है ना, इसको व्यावहारिक बोलते हैं, मेटेरियल लाइफ। स्पिरिचुअल चैलेंज छोड़ दीजिए, आजकल हम लोग के पास जितना मेटेरियल चैलेंजेस है उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई हमारे पास वो इसका सोल्यूशन भागवत में नहीं है, भागवत में नहीं लिखा है कि मोबाइल आएगा भविष्य में, मोबाइल में क्या क्या चैलेंजेस आएगा, मैरिज लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएगा। हमारे जमाने में हम जब ज्वाइन किए थे 25 साल का पीछे 1991-92 में, उस समय गृहस्थ जीवन में इतना चैलेंजेस नहीं था, अभी जो चैलेंज आ रहा है उसको कहां से भागवत में नहीं मिलेगा। तो गुरु का पास जाएंगे ना, गुरु उनको आइडिया देंगे, ठीक है तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये परिप्रश्न जरूरत है। जैसे ब्रह्मा जी ने उनको बोले, किसको, देवता लोग को, तुम तो अपमान ना किए हो, तुम विश्वरूप को मार दियो, तुम जाओ सरी, हाँ क्या उनका नाम बृहस्पति, बृहस्पति को तो प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति तो चले गए, अभी गुरु चाहिए काम चलाने के लिए, फिर गुरु चाहिए कुछ दिन के लिए भी गुरु चाहिए, गुरु नहीं रहते हैं ना तो माया अटक करता है, माया कब बलवान होते हैं, जैसे पुलिस नहीं रहते हैं ना तब चोर बलवान हो जाते हैं। देखो तुम अगर किसी गुरु को तुम नहीं पकड़े हो ना, असुर लोग तुमको अटक करेंगे, तुम किसका पास जाओ, तुष्ट का पुत्र विश्वरूप का पास जाओ। और हियर आप देख लीजिए, इधर है When they were abandoned by their spiritual master, Brahaspati, whom they had disrespected, उनका पास गए, तो 7 चैप्टर्स हम शुरू करेंगे। ये प्रसंग पर परिकितने प्रश्न किए, श्री राजो वाचो कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतदा चख्यो भगवन् भगवत् शिष्येणाम् अग्रमं गुरुः। महाराज परीक्षित इंक्वायर फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, ओ ग्रेट सेज, व्हाई डिड द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ डेमिगॉड बृहस्पति रिजेक्टेड द डेमिगॉड्स हु वेयर हिज ओन डिसाइपल, व्हाट ऑफेंस डिड द डेमिगॉड्स कमिट अगेंस्ट देयर स्पिरिचुअल मास्टर, प्लीज डिस्क्राइब टू मी दिस इंसिडेंट। देखो अभिषेक प्रसंग आ गया ना, गुरु और शिष्य का प्रसंग आ गया, और परीक्षित महाराज एक साधु का चरण कमल में अपराध किया था, वो उदित हो गया वो भाव, भागवत में इसको भाव बोलते हैं। परीक्षित को अरे गुरु, गुरु ने त्याग कर दिया उनको, गुरु क्यों त्याग करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो टाइम हो गया है, मैं कथा को विश्राम दूंगा, आप लोग को ऑफिस जाना है, आज ऑफिस नहीं है ठीक है, मैं फिर आप लोग प्रसाद लेना है आजकल तो प्रसाद नहीं लेते तो शरीर खराब हो जाएगा आप लोग का, ये उनको डर लग रहा था मेरा अपराध हो गया है। उनका प्रश्न का कस्य हेतु हो, पहले देख लीजिए, मैं तो पूरा व्याख्या करके बोलूंगा तो ये 2-3 महीने लगेगा, जितना कमेंट्री है एक एक श्लोक लेख मैं इतना बोल नहीं सकता हूं, फिर भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कस्य हेतु परित्यक्ता, इसका कारण क्या है परित्याग, क्यों गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं शिष्य को, समझ रहे हैं ना, और गुरु कौन है, उत्तम गुरु है बृहस्पति है, और शिष्य भी उत्तम है इंद्र आदि देवता लोग हैं, देवता जब चेला बनते हैं तो कितना कैसे कैसे चेला है वो लोग, तो गुरु उत्तम है और चेला भी उत्तम है, और गुरु का पोजीशन नहीं होता है वो शिष्य को कभी त्याग नहीं करता है। इसमें प्रभुपाद जी लिखे एक शब्द देख लीजिए, अबैंडन, इसका मतलब क्या है, परित्यक्त, और इसको ऐसा लगता है कि गुरु कभी दिल से हृदय से शिष्य को त्याग नहीं करता है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। त्राणाय कारुण्य संसार दावा नल नीढ़ लोकम, त्राणाय कारुण्य घना घनत्म, अरे तो ऑपोजिट हो जाए, नहीं हो जाएगा। ये करुणा शक्ति का जो मूर्ति है वो जीव का दोष कैसे देखेंगे? गुरु तो कभी डिसाइपल का दोष नहीं देखते, कभी दोष नहीं देखते, लेकिन फिर त्याग कैसे किए? थोड़े दिन के लिए त्याग, शिक्षा के लिए, इसका तात्पर्य यही है। जब भी गुरु शिष्य को छोड़ देते हैं, अंतर से नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है ना, मैं अगर अंतर से उनको निकाल दूंगा तो कहां भी आश्रय, उनको कहां से आश्रय नहीं मिलेगा। अंतर से निकालते हैं। और गुरु कब देखते हैं जी कि वैष्णव अपराध करता है, अबंडन कर देते, ठीक है तुम दूर से रहो, तुम वैष्णव का दोष दर्शन करो, इसमें तुम्हारा भला ही नहीं होगा। गुरु तब शिष्य को बोलते हैं दूर से रहो, क्योंकि तुम बहुत फेमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेंप्ट, तुम बहुत अति परिचयात अवज्ञा, ये लग रहा था कि ये इतना सुंदर शिष्य है इंद्र और देवता लोग, और गुरु बृहस्पति, इसको क्यों त्याग कर दिए? और गुरु का काम क्या है? शिष्य का छोटा छोटा दोष नहीं देखते हैं। गुरु अगर शिष्य का दोष देखेंगे, एक भी चेला नहीं बन सकता। और शास्त्र से गुरु का लक्षण और शिष्य का लक्षण ले आइए, दोनों को मिल पढ़ लीजिए, चेला कितना मिलेगा आप देखेंगे। गुरु ज्यादा मिल जाएगा, चेला भी नहीं मिलेगा। जैसा गुरु दुर्लभ है, चेला भी ऐसा दुर्लभ है। चेला बनना इतना छोटा काम नहीं, शास्त्र में पढ़ा होना चाहिए बहुत। इसका मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे, तो आप फिर बोलेंगे ये क्या क्या है ऐसा। ये रोगी है ना, वो चेला कभी नहीं बन सकता है। कलयुग में कौन रोगी नहीं है बताइए? शास्त्र मना किया है, अगस्त संहिता में मना किया, इस पुराण में मना किया, इसको इसको चेला मत बनाओ। जो रोगी है ना वो क्या करेगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरा दर्द हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरा ऐसा हो रहा है। जो रोगी है उनको मत चेला बनाइए। फिर हम रोगी लोग को चेला बनाते हैं कि नहीं भाई, हम क्या चेला बनाएंगे? महाप्रभु है, जगन्नाथ जी, वो नाम कर रहे हैं, उसका भलाई कैसे होगा? शास्त्रों से ऐसे बोल रहे हैं ना, जो रोगी वो अगर इस जन्म में कुछ वजन नहीं करेगा, दूसरा जन्म फिर तो रोगी होगा। लेकिन शास्त्रीय प्रिंसिपल से एवं है वैष्णव परंपरा प्रिंसिपल, हम परंपरा आचार्य को फॉलो करते हैं, शास्त्र का सब सब हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारे आचार्य लोग जो किए हैं हम इसको अंधाजे से मानते हैं, क्योंकि आज आचार्य जवान पुरुष वेद, वेद कौन है? आचार्य जवान जो पुरुष है वो वेद का साथ लेकर आए। शास्त्र मना किए हैं, जिसका पास पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है, उनको चेला मत बनाए। संस्कृत का श्लोक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो गरीब जो होता है ना, वो सोलो माला क्या करेगा? हरे कृष्ण पैसा कहाँ लाना है, हरे कृष्ण पैसा, वो तो उनका दिमाग में वही पैसा पैसा है, वो क्या मंत्र सिद्ध कैसे करेंगे? जब ये माला पकड़ेंगे ना वही चिंता है। एक तो मन है ना, जो मन का कामना है पैसा, वो कैसे मंत्र सिद्धि करेंगे? जो ज्यादा गुस्से वाले क्रोधी है, ज्यादा कामी है, उसका सब वर्ष है। क्या हमारे आचार्य लोग उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं, सिर्फ एक चीज को देखते हैं, श्रद्धावान जन कर नाम उपदेश। महाप्रभु ने यही बोले, जिसके पास थोड़ा भी श्रद्धा है भगवान के नाम करने के लिए, उनको नाम दे दीजिए। इस जन्म में तो उनका कुछ भला ही हो जाएगा। अगर गुरु दोष देखेंगे तो एक भी चेला नहीं बन सकता। तो बृहस्पति जैसा गुरु और इंद्र जैसा देवता, ये गुरु चेला का संबंध है। इंद्र ने कौन ऐसा दोष किए? पश्य हेतु परित्यक्त आचार्य जिन आत्मना सुरा, और सुरा है देवता है, और आचार्य जी ने उनको क्यों त्याग किए? एतत् आचख्य भगवान शिष्याणम, शिष्याणम क्रमम गुरु, इस शिष्य गुरु का संबंध है। गुरु शिष्य में को थोड़ा अपराध हो गया ना, ये प्रसंग मुझे सुनना है, क्योंकि मैं एक अपराधी हूं। ये अपराध कितना, क्या बोले, इतने डीप रूटेड है, कितना गहराई में है, मैं इसको सुनना चाहता। पर कित जब भी भागवत में अपराध प्रसंग, अभिशाप प्रसंग आता है ना, देख लीजिए गजेंद्र प्रसंग आ गया। सुखदेव चाह रहे थे आगे जाने के लिए, उनको रोक रहे थे, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, क्योंकि अभिशाप प्रसंग आता है तो परकित का याद आ जाता है कि मैं एक अपराधी हूं, मेरा अपराध कितना गहराई में है। हम भागवत क्यों सुनते, इसीलिए सुनते हमारा कित क्या दोष है, क्या अपराध है, वो भागवत हमको सुना देते हैं, हम कंपेयर करते हैं ऐसे ऐसे में किया हूँ, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित रिपेंट करते थे, अनुताप करते थे और भगवान क्षमा प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं इतना इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो क्या फाइनल ए वर्ष का कंक्लूजन यही है? क्या कंक्लूजन है? शिष्य को गुरु कभी नहीं छोड़ते, और शिष्य का दोष गुरु कभी छोटा छोटा दोष कभी नहीं देखते, और जब देखते हैं शिष्य का अपराध भाव आ गया तो भविष्यत में वो जैसे अपराध नहीं करेंगे, इसीलिए उनको छोड़ देते, उसको छोड़ना नहीं, उसको थोड़ा दूर रखते हैं। ये सार तब आएगा प्रसंग क्यों ऐसा हो गया। इंद्र का कारण है मद, धन का मद, पद का मद, तो ये आएगा, हम सुनेंगे शाम को। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, अब मैं तुम्हारे ऐसे नहीं कथा कथा माध्यम से नहीं बोल सकता, स्टोरी माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, ये तो मेरा आदत नहीं है, क्या करूँ। तो आप बोलेंगे दो दिन में खत्म कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता, तो कहाँ कितना तक जाएगा, तो उतना तक सुनेंगे। प्रभुपाद बरफोट आचार्यों की सीखा ये इंपॉर्टेंट है, और जो प्रसंग सुनना है हमारा, अभी कितना स्पीकर है उन लोग से सुन लीजिए, वो अच्छा से बता देते हैं स्टोरी वगैरह। मुझे तो स्टोरी बोलना, हम पूरा कथा से बोलना मुझे मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, टाइम हो गया, आप लोग प्रसाद लेंगे, अगर किसका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, सही समय पर आइए, क्योंकि कम इधर तो आप लोग बहुत बिजी है, 5 मिनट से पहले आऊँगा क्लास, 5 मिनट से पहले जरा दम तो शुरू होगा, तो पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि बच्चे लोग हैं वो भी प्रसाद लेंगे, कोचिंग में जाएंगे, आप लोग का जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर किसका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम हाँ पहले जमन में आपको मैं पहले जमन का बात बोलता हूँ, भक्ति का क्या है। पहले जमन में घर में जब भी प्रॉब्लम आता था वो क्या करते थे, मामा को बोलते थे, अकेले कुछ नहीं करते थे, घर में कोई भी परेशान आ जाता है ना वो पहले मामा को कंसल्ट करते, अगर पिता नहीं तो मामा को पूछते थे, दादा को पूछते थे, मेरा एक प्रॉब्लम आ गया मैं क्या करूँ। इसलिए जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, जो हायर वैष्णव है, गुरु है, मुझे पहले कंसल्ट कर लीजिए। मनमा भी हम क्या सोच लेते हैं, इसमें मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम कभी बड़ा नहीं होता है, थोड़ा को हम बड़ा बना देते हैं, खुद का दिमाग लगाकर इसको बड़ा बना। इसलिए वैष्णव से कंसल्ट करना चाहिए, जो वैष्णव भक्त लोग होते हैं, और उस समय सबसे बड़ा चैलेंज यही हम लोग के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मेरा किसका ऊपर विश्वास नहीं, इतना बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, ठीक है, तो कम से कम होली नेम को मत छोड़िए। उस समय शुद्ध बुद्धि का जरूरत है, प्रेजेंस माइंड, इंग्लिश उड़िया में बोलते हैं ना, सॉरी क्या इंग्लिश टर्म में बोलते हैं ना, प्रेजेंस माइंड, ये लड़का का नहीं। प्रेजेंस माइंड क्या है, हम लोग प्रेजेंस माइंड नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हमारा टर्म है शुद्ध बुद्धि, समझ रहे हैं। शुद्ध बुद्धि का मतलब जो बुद्धि कृष्ण देते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, मंदिर में आना है, चैंटिंग करना है, और ठाकुर जी को बोलना है कि मेरा इड्वालिटी है, क्या करना है मुझे। तो चाहे वैष्णव माध्यम से हो, चाहे शास्त्र के माध्यम से हो, नहीं तो खुद का अंतर से परमात्मा आपको एक डिटर्मिनेशन दे देता है, नहीं तुझे ऐसा करना है, इसको प्रेजेंस माइंड हम बोलते हैं। बेटर है वैष्णव, इसलिए हमारा आश्रय पहले वैष्णव होते हैं, वैष्णव, इसका बाद गुरु, इसका बाद हरि, हरि गुरु वैष्णव, तीनों आश्रय, तीनों किसी से भी आश्रय कोई ले जाता है ना, उनको प्रेजेंस माइंड आ जाता है, मुझे ऐसा करना है। साधन होली नाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो चैलेंजेस आता है ना, चाहे कर्म की वजह से आए, हम लोग तो इतना बड़ा भक्त नहीं है कि भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं, भगवान तो हमको कभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, माया का टेस्ट में हम फैल रहे हैं, और भगवान क्या हमको टेस्ट करेंगे। जो लोग क्या बोले, ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन कब होता है, महीने में होता है या कब होता है एग्जामिनेशन? देखो एवरी वीक में होता है, जो एवरी वीक में फेल होता है वो क्या फाइनल एग्जामिनेशन दे सकता है? नहीं दे सकता है। हम लोग ऐसे हैं, माया के एग्जामिनेशन में हर समय फेल है, फाइनल एग्जामिनेशन तो कृष्ण है, वो क्वेश्चन डालेंगे, उनका पास हम नहीं पहुंचते। तो इसीलिए क्या करना है, कर्म की कर्मफल बहुत प्रबल है ना, हम जितना शरणागत होते हैं उतना कर्मफल चला जाता है, 30% है 30% चला जाता है, उतना प्रोटेक्शन मिलता है। और उसमें तो कर्मफल एक्टिव है, उसमें भजन छोड़ देते हैं फिर गए, नाम कभी नहीं छोड़ना, उसमें ज्यादा करना। और हम सोचते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब करूंगा, नहीं ये तो कर्मफल है ना, नहीं नाम के प्रभाव से चला जाए। भक्त लोग का संग नहीं छोड़ना है, भागवत पढ़ना नहीं छोड़ना है और नाम करना नहीं छोड़ना, स्ट्रगलिंग होता है, माइंड में वजह है फिर भी करना है, ये तो हमारा पद्धति है और दूसरा कोई नहीं। और इससे बेस्ट है कि वैष्णव लोग का संग करना, वैष्णव लोग से मिलना है। तो हम थोड़ा क्या कर देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अकेले हो जाते हैं, अरे मंदिर में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम आ गया क्या मंदिर में जाऊं, अकेले हो जाओ, अकेले हो गया मतलब बस माया खींच, कोई छागल, छागल बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, गोट, छागल, बकरी, बकरी है ना, बकरी झुंड में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेली वो अकेला या अकेली हो जाते बकरी पीछे सियार है, सियार, सियार क्या बोलते हैं, जैकल्स, जैकल कहाँ है बकरी को पता नहीं, वो एक गड्ढा बनाता है ना, गर्त बना कर रहता है, बकरी कहाँ है सियार को पता है, बकरी को पता नहीं सियार कहाँ, पता है ना, हम लोग को पता नहीं माया कहाँ है, लेकिन माया को पता है हम कहाँ है, वो हमको पकड़ लेगा। तो ऐसे हम लोग बकरी जैसे रहते हैं झुंड में तो सियार डरता है, ऐसे हम भक्त लोग का संग में रहते हैं ना तो माया पकड़ता नहीं, थोड़ा छोड़ दीजिए पीछे टांग धर कर टूट कर ले जाता है और बस भीतर ले जाता है, और दूसरा बकरी तो देखेंगे कहाँ है वो, मिलेगा भी नहीं। जो भक्त लोग का संग छोड़ दीजिए, आप उनको ढूंढिए वो भक्त था कहाँ गए अभी, अब ढूंढेंगे वो मिलेगा नहीं, अभी ऐसा होता है। माया बहुत बलवान है, उनका गोद पर हम, माया का गोद पर हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, क्या है क्या बोल रहे हैं, भीतर में माया है बाहर माया, माया का जगत है, समझ रहे हैं ना, ऐसा है। तो सिर्फ एक गुरु आश्रय, आचार्य लोग का आश्रय, भगवान के आश्रय लेकर इतना कर रहा, नहीं तो भजन करना कलयुग में केवल साधु लोग का आश्रय आशीर्वाद, विश्वास बढ़ाना चाहिए उस समय, नहीं प्रभुपाद है मेरा गुरु है, वैष्णव लोग है, मुझे प्रोटेक्शन देंगे, कोई चले जा रहा है, पहले जमाने ऐसे था ना, मेरा मामा है मेरा नाना है, अगर कुछ होगा तो देखेंगे, उनका पास जाएंगे, उनके पास पैसा है, तो माइंड को पहले, माइंड का सपोर्ट के लिए तो कोई कुछ चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भक्तों का संग, प्रभुपाद जी क्या करते हैं उनके कन्वर्सेशन में, ऑल्दो इन आवर सोसाइटी वी कैन नॉट फाइंड सो मेनी एलिवेटेड डिवोटीज, बट स्टिल यू हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज। आप अगर ढूंढेंगे मुझे प्रभुपाद जैसे साधु चाहिए, मुझे इतना बड़ा बड़ा वैष्णव चाहिए, प्रभुपाद बोले अगर ऐसे कोई एलिवेटेड वैष्णव नहीं है ना, स्टिल यू हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज, भक्त लोग का संग फिर भी करना है, क्योंकि नहीं करना है ना माया खींच लेंगे। भक्त लोग का कुछ भी नहीं होता है तो प्रभुपाद का दर्शन होता है कि नहीं, मंदिर में आ जाता है, प्रणाम कितना बार करते हो देख लीजिए, नाम कीर्तन सुनने को मिलता है कि नहीं, क्या नुकसान है इसमें हम जी लेंगे, ठीक है ठीक है। अब जाइए, जो टाइम हो गया बच्चे लोग है प्रसाद लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ देव की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।